الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم نے ایک دن چھوڑ کر کے یعنی پرسوں کا جو دن تھا اس میں سورۃ الانعام کی ان بلکہ پرسوں سے بھی پہلے والا جو دن تھا ہمارے اس کو ترسوں کہہ دیتے ہیں. تو دو دن پہلے ہم نے سورۃ الانعام کی آیات کی تفسیر جو ہے وہ معرف القرآن کی جلد نمبر 3 سے پڑھنی شروع کر دی تھی، اور یہ جو 5 آیات ہیں ان کا ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ایک کلاس ہوئی وہ ایک ایکسیپشن تھی، ایک اسپیشل کلاس تھی جو کہ سورہ انفال کی 3 آیات کو لے کر کے ہم نے کچھ مدعا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کچھ بات آپ کے سامنے رکھی تھی جو کہ جو علم حاصل کرنے کا جو ماڈل ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا جو نمونہ جو ماڈل ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملتا ہے، اسوہ حسنہ سے ملتا ہے، تو اس ماڈل سے فائدہ اٹھانے کا کیا صحیح طریقہ ہے اور کیا وجوہات بنتی ہیں کہ ہم اس ماڈل میں داخل ہونے کے بعد بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں. تو اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ پرسوں کی کلاس کے اندر کافی ساری تفصیلی بات ہوئی تھی اور اس کو ہم نے اسپیشل کلاس کا عنوان دیا تھا. آج جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا اس ریکارڈنگ کو کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ پھر سے سنیں گے اور کچھ جو ہے نا وہ اس کو توجہ سے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس ماڈل میں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب ہم اس ماڈل کی اس نمونے کی صحیح قدر کر سکیں اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی ناقدری کے گناہ سے ہم بچ سکیں، اس کی ناقدری کے گناہ سے ہم بچ سکیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس ریکارڈنگ کا انتظام کروایا ہے اپنے کچھ بندوں کی مد کی خدمت کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے، ورنہ ایک دفعہ بات سننے میں تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی. غور سے سننا، پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھنا، اس کی تکرار کرنا، تب کہیں جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے. سورت الانعام کی تفسیر ہم نے شروع کر لی تھی، پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس عاجز فقیر کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. شام کو جب افطار کے لیے ہم بیٹھے تو اسی وقت جو ہے وہ ان کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی، تو یہ عاجز ان کے پاس گیا اور دیکھا ان کو جو ہے وہ جیسے نارمل پروسیجر کے مطابق ہم ان کو ریلیف کرنے کی کوشش کرتے تھے ویسے کرنے کی کوشش کری، لیکن اس میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس فقیر کے بھائی جو ڈاکٹر ہیں تو ساتھ ہی قریب میں ہی رہتے ہیں، تو ان کو پھر میسج کیا، ان کو بلایا، کال کیا، وہ آئے، پھر مستقل ان کے ساتھ ہم کوئی 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے जो फैसला आता है उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये उनका आखिरी लम्हा ही था, आखिरी लम्हात ही थे, और बिलाखिर जो है वो शाम के, रात के 8 बजे यहाँ के वक्त के हिसाब से, उनकी रूह जो है वो इस आलम फानी से परवाज करके आलम बरजख में पहुंच गई। अल्लाह ताला उनकी तमाम खताओं कोताहियों से सरफ नज़र फरमाए, उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए, और उनके हसनात को जो है वो उनके लिए ज़खीरा आखिरत बनाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, उसमें अपने जन्नत की खिड़कियों को खोल फरमाए, उनके आगे के तमाम मरहलात को, तमाम लम्हात को जो है वो आसान फरमाए, और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो वरसा हैं, उनको उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस फकीर के दोनों वालिदैन की मगफरत फरमाए, उन दुआओं को उनके हक में, और जो हमारे जितने भी बुजुर्ग इस दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, जितने भी हमारे जानने वाले, चाहे वो बुजुर्गी की हालत में रुख्सत हुए हों, चाहे वो जवानी की हालत में रुख्सत हुए हों, जिस भी, अल्लाह ताला उन सब के लिए उनको जरिया जरिया आखिरत बनाए और उनके सवाब का मुजब बनाए। हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बुजुर्गों को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, क्योंकि हदीस मुबारका से एक बड़ी अच्छी दलील किसी ने पिछले दोनों शेयर करी और काफ़ी दफ़ा नज़रों से गुजरी, कि अल्फाज तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन उस हदीस से साबित होता है कि जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं ना, तो ये उनके नेक होने की अलामत है। ठीक है, क्योंकि सालेह जो है ना, सालेह औलाद ही अपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए, चाहे हमारे जिस्मानी वालिदैन हो, चाहे हमारे रूहानी वालिदैन हो। रूहानी वालिदैन कौन होते हैं? जो कि हमें अल्लाह से जोड़ने का सबब बनते हैं और हमें रूहानी रिस्क पहुंचाने का सबब बनते हैं, और जिस्मानी वालिदैन वो होते हैं जो कि हमें जिस्मानी तौर पर नशोनुमा हमारी करते हैं और हमारी अफजाइश करते हैं, हमें रिस्क पहुंचाते हैं। पहुंचाने वाला तो दरअसल अल्लाह ही होता है, लेकिन वो इनको वसीला बना लेता है, सबब के तौर पर इख्तियार कर लेता है। तो हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है, कितना कितना अजीम, कितना पाकीज़ा, कितना अच्छा दीन है, कि जो खाली सबब बन रहे होते हैं, जो खाली सबब बन रहे होते हैं, उनकी भी कितनी ज़्यादा कदरदानी की है, हमें तलकीन फरमाता है, हमें इसकी फरमाता है। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मन लम यशकुर इन्नास लम यशकुर अल्लाह, कि जिसने असबाब की का शुक्र अदा नहीं किया, ये इंसान कौन है ना, कि जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, इंसान की क्या हैसियत है? फ़कत सबब बनने के, फ़कत सबीला वसीला बनने के, राइट? और वो भी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जो उन्होंने हमें रिस्क पहुंचाया, चाहे रूहानी पहुंचाया हो, चाहे जिस्मानी पहुंचाया हो, वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर हमें नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बताया कि जो इन वसीलों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, राइट? तो जरा हम तसव्वुर करें कि हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है, और वो कितनी खूबसूरती को फैलाने वाला दीन है। यानी हम सोचें ना, जब हम एक दूसरे के शुक्रगुजार रहेंगे, एक दूसरे के जो है ना वो कदरदान रहेंगे, कि भाई हाँ, इसके वसीले से मुझे ये फ़ायदा पहुंचा, उसके वसीले से मुझे ये फ़ायदा पहुंचा, उसके ज़रिए से मुझे ये राहत पहुंची, उसके ज़रिए से मुझे ये, तो हमारे दरमियान कितनी मोहब्बतें होंगी, कितनी उल्फतें होंगी, कितनी चाहतें होंगी। हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये याद रखते हैं, उससे मुझे ये तकलीफ पहुंची थी, उससे मुझे ये तकलीफ पहुंची थी, उसने मुझे ये वाला दुख दिया, उसने मुझे ये वाला दुख दिया। हमारा दिल जो है वो एक दूसरे से नफरत में मुब्तला होता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, ये जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। जब हम इंसानों का शुक्रिया अदा करना शुरू हो जाएंगे, हैं, किसी से हमें एक गिलास पानी का मिल गया तो हम उसके ऊपर उसका शुक्रिया, उसके मशकूर होंगे। किसी से जो है हमें कोई और राहत मिल गई, किसी से कुछ मिल गया, राइट, हम उसका शुक्रिया अदा करने वाले बन जाएंगे, तो हमारे दिलों में नफरतें पैदा होंगी, हमारे हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बोझ और अदावतें और शिकायतें पैदा होंगी, या एक दूसरे से मोहब्बतें पैदा होंगी। मोहब्बतें ही पैदा हो सकती हैं इस सूरत हाल में, इस सूरत में सिर्फ मोहब्बतें पैदा हो सकती हैं, राइट? तो एक, यानी अगर खाली नबी अलैहिस्सलाम के इस एक फरमान के ऊपर जो है ना, वो अगर हम उसको समझ लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो हमारे घराने मोहब्बतों के नमूने बन जाएं, हमारे मुआशरे जो है ना, वो हमारे मुआशरे जो हैं वो गुलदस्ते हैं मोहब्बत बन जाएं, सारे के सारे एक दूसरे के शुक्रगुजार, राइट? थैंकफुल टू एवरीवन एल्स, बीइंग बीइंग ग्रेटफुल, है तुमने ये फायदा, तुमने ये फायदा पहुंचाया, तुमने ये क्या नहीं किया, राइट? तो कितना आसान है, लेकिन हम कदरदानी नहीं करते, हम एहसास नहीं करते इन बातों का ना। हम जरा सा सोच लें तो हम तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मर मिटे, राइट? और अपने परवरदिगार के ऊपर जो है ना, वो सब कुछ कुर्बान कर, जो कि उसी का दिया हुआ है, कौन सा एहसान करेंगे उसके ऊपर सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, राइट? तो हम उसी की दी हुई जान को उसके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम उसके रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे और हमारे परवरदिगार के दरमियान रुकावट बन सके, है? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन सी ऐसी जो है वो तमन्ना है जो कि हमें परवरदिगार से दूर रख सके? तो ये है हमारा दीन, राइट? ये है वो हिदायत जो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें भेजी, कुरान की शक्ल में और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की शक्ल में। तो अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। खुलासे तफसीर फिर हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं सूरह नाम की इन 5 आयात की। तो यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयान कुरान से लिया गया है, ली गई है। तो इसमें फिर अंडरलाइन जो अल्फाज होते हैं वो तर्जुमा होते हैं, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है वो छोटी छोटी तफसीरें होती हैं। तो फरमाते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम जब किसी लफ्ज़ के साथ तक जाता है तो उसके अंदर जो है ना, वो बहुत वुसअत आ जाती है, बहुत इस्तिआब आ जाता है, यानी वो ऑल एनकम्पसिंग, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जो है वो समो लेता है। तो हम्द यानी तारीफ, लेकिन अलहम्द सारी की सारी तारीफें, यानी तारीफ की जो भी शक्ल हो सकती है, जो भी सूरत हो सकती है, जो भी परम्यूटेशन हो सकती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले या कंप्यूटर साइंस वाले परम्यूटेशन के लफ्ज से बहुत वाकिफ होंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकती है तारीफ की, वो सब की सब अल्लाह के लिए है, राइट? हत्ता कि हम किसी मखलूक की तारीफ करते हैं, अपने माँ बाप की तारीफ करते हैं, अपने शेख की तारीफ करते हैं, अपने असातिज़ा की तारीफ करते हैं, किसी और किस्म की कामयाबी की तारीफ करते हैं, वो सारी की सारी तारीफें जो हैं वो अल्लाह ही को लौट रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से ही किया, उसके बगैर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी तारीफ इनका लायक अल्लाह ही है, जिसने फिर अल्लाह ताला जो है ना, वो उस तारीफ में कुछ फिर अब जो है वो सब फैक्टर्स, क्या इस वजह से भी मेरी तारीफ है, वो तारीफ अलग अलग भी बताते हैं कि जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, खलक समावाती वल अर्द, और व जाल गुलुमाती वन नूर, और तारीकियों और रोशनी को बनाया, ठीक है? पैदा किया का लफ्ज अलग, तर्जुमे में भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अलग रखा, हालांकि दोनों के लिए बनाए का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, या दोनों के लिए पैदा करने का। उर्दू जुबान में तो फिर वो वाली तो प्रिसाइसनेस नहीं है ना उर्दू जुबान के अंदर, जैसे कि अरबी के अंदर है। तो उर्दू में जो है वो बनाया सबके लिए चलता है, या पैदा किया भी सबके लिए चलता है उर्दू के अंदर, लेकिन अरबी में अलग अलग है, खलक अलग है, जाला अलग है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका लिहाज फरमाते हुए उर्दू के भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, कि खलका के लिए पैदा किया का लफ्ज इस्तेमाल किया और जाला के लिए बनाया का लफ्ज इस्तेमाल किया, ताकि कुछ तफरीक तो कम अज कम तो रहे ना। हम उर्दू में सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना, ठीक है? तो वो तफरीक यहाँ पे रखी है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर फरमाया कि फिर भी काफिर लोग ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ठीक है, तो यहां पर क्या जबरदस्त बामुहावरा तर्जुमा इसको कहते हैं. थुम्मा का तर्जुमा जो है वो फिर से भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे अंग्रेजी में देन होता है, THEN, देन, राइट. लेकिन बामुहावरा तर्जुमा वो होता है जो कि मुखातब को समझ में भी आए, राइट, उसके मुहावरे के मुताबिक, उसकी स्लैंग के मुताबिक, उसकी जो यूज लैंग्वेज ऑफ यूजेज है उसके मुताबिक तर्जुमा हो, ताकि उसको समझ में आ जाए. तो फरमाया कि फिर भी काफिर लोग, यहाँ पे सुम्मा का तर्जुमा किया, फिर भी काफिर लोग इबादत में दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते, ठीक है, यानी अपने रब के बराबर इबादत में, कि वो भी पार्टनर हैं, वो भी इबादत के काबिल हैं, ये भी इबादत के काबिल हैं, क्योंकि उनसे भी हमें फायदा मिल रहा है, इनसे भी हमें फायदा मिल रहा है. जैसे हिंदू, राइट, इंडिया वाले तो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बाकी लोग भी जितना बहुत तो जानते ही हैं कि हिंदू हर एक को खुदा क्यों कहते हैं. एक दफ़ा हम छोटे बच्चों को जो है ना, वो बॉस्नियन बच्चे थे अमेरिका में, उनकी क्लास या जिस जो है वो पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर अजीब जहन में ख्याल आया कि बच्चों से पूछा जाए. तो वाकई एक बच्चे ने, छोटा बच्चा था वो, बिल्कुल शायद 7-8 साल का होगा, उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया. मैंने पूछा, हिंदू गाय की इबादत क्यों करते हैं, बच्चों से पूछा, हिंदू गाय की, वाई डू हिंदूज वर्शिप खाओ. तो एक बॉस्नियन बच्चे ने क्लास में से जवाब दिया, बिकॉज दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि उसको गाय से बेनिफिट मिलता है, उनको दूध मिलता है, राइट, और दूध जो है वो बड़े फायदे की चीज होती है. तो अब बेनिफिट मिल रहा है उनसे, तो उनकी भी इबादत शुरू कर दी, गाय की भी इबादत शुरू कर दी, राइट. अब हर चीज ही अल्लाह ताला ने फायदे की बनाई है. अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं कि हमने किसी चीज को अबस नहीं बनाया, किसी चीज को बेफायदा नहीं बनाया, राइट. तो हर चीज फायदे की बनाई, तो क्या हर चीज इबादत के भी लायक है, कि अब आप हर एक की जो है वो अतात भी करना शुरू कर देते हैं. माँ बाप कितना फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन माँ बाप की अतात की इबादत शुरू कर देंगे क्या? क्या माँ बाप को जो है वो आप बंदगी के काबिल समझना शुरू कर देंगे? बंदगी के काबिल शुरू कर समझने का मतलब क्या सिर्फ ये नहीं होता कि सामने उनको बुत बना के रखो और उनके सामने सर टेकना शुरू कर दो, सजदे और रुकू करना शुरू कर दो? नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में इनका हुक्म मानना शुरू कर दो. इसको बंदगी कहते हैं, राइट. अल्लाह का हुक्म जो कि नबी के वास्ते से पहुंचा है, उसको छोड़ करके किसी का हुक्म मानो, इसको बंदगी कहते हैं. ये है बंदगी, अताअत, राइट, एब्सोल्यूट अताअत. तो अब किसी से फायदा पहुंच रहा है, अम्मी से फायदा पहुंच रहा है, अम्मी की बंदगी शुरू कर दी. अब्बू से फायदा पहुंच रहा है, अब्बू की बंदगी शुरू कर दी. जॉब से फायदा पहुंच रहा है, तो जॉब के बॉस की बंदगी शुरू कर दी. गधे से फायदा पहुंच रहा है, तो गधे की बंदगी शुरू कर दी, जैसे हिंदू. तो फिर मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क रह गया? उसूलन तो बिल्कुल सेम मामला है दोनों का, जहां से फायदा मिल रहा है उसकी बंदगी शुरू कर दी, राइट. तो बराबरी नहीं है, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है. इनका शुक्रिया अदा करना, ये अल्लाह ताला के शुक्रिये के तहत रहेगा. ये नहीं कि अल्लाह के शुक्र से ज्यादा, के उस शुक्र अदा करने से ज्यादा किसी का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया. ये बात कभी भी नहीं भूल सकते हम कि जो भी हमें फायदा पहुंचा रहा है वो अल्लाह के दिए हुए वसाइल के और तौफीक के वजह से फायदा पहुंचा रहा है, वरना नहीं पहुंचा सकता था, ठीक है. तो ये काफिर लोग, इनकारी लोग जो नबी को नहीं मानते, इनकार करते हैं नबी की बताई हुई इन हकीकतों का, वो क्या करते हैं? बराबरी करना शुरू कर देते हैं बंदगी के अंदर. अच्छा, किसी ने आप एक सवाल लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं कि अच्छा, पिछली क्लास से पहले, पिछली क्लास से एक सवाल है, ये सोच करके हम मशाइख का सर खा रहे हैं. अच्छा, ये सोच करके हम मशाइख का सर खा रहे हैं, कहीं शैतान हमें सही सवाल करने से ना रोक दे, कैसे मालूम हो कि सही सवाल किया है? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे भी पता है अच्छी तरीके से. इसी वजह से ना, पहले हम इस बड़ा अरसे से ये मसला चल रहा है, सर खाने वाला मसला, ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन हम पहले जो है ना बिल्कुल इसको जिक्र ही नहीं करते थे, ठीक है. क्यों नहीं जिक्र करते थे? उसकी वजह ये होती थी कि शैतान जो है ना वो फौरन दूसरी एक्सट्रीम पे लेके जाएगा. वो दूसरी एक्सट्रीम क्या होगी कि जी ना, मैं कुछ नहीं पूछना चाहिए जी, हजरत मसरूफ हैं, और हजरत जो है ना वो तो कहीं उनका हम सर खाना शुरू होना शुरू कर दें, तो कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना. और फिर शैतान के तो फिर उसके बाद वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे. ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि चूंकि हजरत से तो नहीं पूछना, उनका तो सर खाना वाला मसला है यहाँ पर, तो इस वजह से अब फिर कौन मशवरा देगा? शैतान मशवरा देगा, चाहे वो जिन की शक्ल में हो चाहे वो इंसान की शक्ल में हो। इंसानी शयातीन मशवरे देंगे, इंसानी शयातीन से अपने मसले पूछेंगे, या फिर जो है वो जिन शैतान जो है वो तो मुस्तकिल लगा हुआ ही है अनदेखी हालत में हमारे मशवरे देने के लिए, वसवसे डालने के लिए, है ना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर इन्नास, ठीक है। तो इस वजह से ना, इस खौफ से, इस फिक्र से हम ये बात बिल्कुल भी पहले नहीं किया करते, बर्दाश्त करते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन हम भी इंसान है ना, जैसे कि उस क्लास में बताया ना कि हम खुदा नहीं है, हमारे पास खुदाई सलाहियतें नहीं है। तो एक बस हो जाती है, इंसान की बस हो जाती है, खुदा की बस नहीं होती। खुदा के उसूल जो है वो बेशक अपनी जगह पे अल्लाह ताला अपने उसूलों को फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह की बस नहीं होती, हमारी बस हो जाती है, ठीक है ना। और फिर उसकी वजह से जो नुकसानात सामने आने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी तो एक रीजन होती है ना। मतलब बस हो जाती है, तो मैं अपनी कमजोरी की वजह से कह रहा हूँ कि मेरी बस हो गई, लेकिन एक हकीकत ये भी तो है ना कि अब इसकी वजह से सवाल पूछने वालों को भी तो नुकसान होता है ना, राइट। और उन लोगों को जो कि जेन्युइन सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको भी तो नुकसान हो रहा होता है ना, कि उनके लिए फिर कहां से वक्त लेकर के आएंगे जो कि सही सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सर खाने वालों की वजह से फिर उनका नुकसान हो रहा होता है, सर खाने वालों का नुकसान हो रहा होता है नाकदरी की वजह से, और सर खाने वालों की वजह से दूसरों जो नहीं सर खा रहे होते उनका भी नुकसान हो रहा होता है। इस वजह से इस टॉपिक को बहुत अरसे से चाह रहे थे कि अच्छी तरीके से जरा तफसील के साथ बयान करें, तो अल्लाह ताला ने उस दिन तौफीक अता फरमा दी, ठीक है। तो भाई इसको फिर ना हमने समझाया भी है, इस वाली क्लास में तो शायद ये वाली बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके अलावा बयानात के अंदर ये बात हुई है कि सर खाने का मतलब क्या होता है, कि आप एक अच्छा सवाल करते हैं, जरा गौर से देखें, अच्छा सवाल गौर से सोच समझ के पूछना, ठीक है ना। क्या ये इतना हक नहीं बनता किसी का कि आप जरा सोच समझ करके उससे सवाल पूछें? जब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि शेख ऑन व्हाट्सएप, जैसे कि शराब ऑन टैप्स, है ना, फ्री में शराब मिल रही है, तो वो काफिर लोग जो हैं वो टैप खोलेंगे, उधर से शराब आनी शुरू हो जाएगी। कोई मेहनत को थोड़ी करनी पड़ती है शराब पीने के लिए, फिर नलका खोला शराब आ गई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो फिर क्या, शराब की नाकदरी करेगा ना वो काफिर भी? तो ये व्हाट्सएप वाला शेख है ना, व्हाट्सएप है ना, फ्री में है, हर वक्त चल रहा है, तो जो है ना, अब एक खातून जो है वो क्या क्या लिख रही है कि हजरत जी वो जो है ना, वो मेरी जो पता नहीं कौन है, जेठानी है तो फलानी है, तो वो ना मुझे टॉन्ट करती रहती हैं कि मैं इतना आहिस्ता कुरान क्यों पढ़ती हूँ, ठीक है। तो वो चूंकि ना मैं आहिस्ता कुरान, हमने कुरान पढ़ना सीखा नहीं, तो अब जो है ना मेरे कुरान पढ़ने की स्पीड जो है ना वो तेज़ नहीं है, तो मेरी जेठानी, तुम्हारी मेरी भाभी, तो पता नहीं कौन, वो मुझे जो है ना वो कहती हैं तुमने कितने कुरान पढ़े, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, तो मुझे बताएं मैं उनको क्या जवाब दिया करूं, राइट। मुझे बताएं कि मुझे उनको क्या जब मैं उनको क्या जवाब दिया करूं। अच्छा, ये खातून जो है वो कई दफा जो है वो अच्छे सवाल कर चुकी हैं, और हम उनको तफसील से जो है वो जवाब दे चुके हैं, और बहुत सारी चीजों में उनको गाइड कर चुके हैं, लेकिन अब जो है ना वो उसके बाद अब जो है वो ये भी इस किस्म का भी, फिर अब हम उनको जवाब दें, इतना आपको क्लासों में क्या समझाते हैं, राइट, वो नहीं सुनना, उधर से जो है वो आपने जवाब जो है वो हासिल नहीं करने, ठीक है ना। और पिछली जो आपको बातें बताई थी, कभी स्क्रॉल अप करके उन्हीं को पढ़ लिया करें। अगर व्हाट्सएप तो अल्लाह ताला ने क्या एक नामे अमाल की शक्ल हमें दे दिया ना, कि जिसके अंदर जो लिखा होता है सो वो लिखा हुआ है उसके अंदर, अब आप स्क्रॉल अप करके उसको खुद पढ़ लें तो आपको बहुत सारी चीजें पहले की समझाई वो याद आ जाएंगी, लेकिन नहीं, ऊपर नहीं देखना, नया सवाल करना है, राइट। तो इसको कहते हैं सर खान, हालांकि ऊपर स्क्रॉल अप करके पिछले जवाब को पढ़ें तो बहुत सारी चीजें उधर से भी समझ में आ जाएंगी, क्लास को गौर से सुने तो बहुत सारी चीजें उधर से भी समझ में आ जाएंगी, लेकिन नहीं, जरा सा कोई बेवकूफी की बात जहन में आई, फौरन झट करके मार दिया उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज, सेंड का बटन दबाना क्या है मुश्किल, बहुत बोल के कुछ लोग तो उसकी भी तकलीफ नहीं करते ना, वो आ गया है व्हाट्सएप के अंदर वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक है ना। तो अब लिखने की में तकलीफ होती है ना, लिखने में कुछ लोग तो वॉइस मैसेज करने के ऊपर, हमने खुद ही बंद कर दिया, नहीं वॉइस मैसेज का तो हमने जवाब ही नहीं देना, तो अब वॉइस मैसेज नहीं करते, तो अब वॉइस टू टेक्स्ट, राइट, लिखने की भी तकलीफ गवारा नहीं करेगा कोई। तो आपके साथ कोई ये काम करे, इस तरह से आपके साथ करे, तो आपकी बस नहीं हो जाएगी। ऐसे ना करें ना, ठीक है? सवाल करें और सोच करके सवाल करें, फिक्र करके पहले सोचें मैं क्या सवाल कर रही हूँ। लिखने में एक बहुत फायदा ये भी होता है, अगर इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करे तो लिखने का फायदा ये भी होता है कि इंसान भेजने से पहले उसको एक दफा पढ़ सकता है। जुबान से कही हुई बात तो आप, ये नहीं होता ना कि पहले आपने करी फिर उसके बाद आप उसको बाद में सेंड करेंगे, ठीक है ना? वो तो जुबान से निकल गई, इसको निकल गई, वो तो चली गई आगे। लिखने वाली लिखी हुई चीज को तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं ना, ठीक है? तो सोचें कि मैं किस चीज का सवाल कर रही हूं, क्या ये सवाल जो है वो बनता है कि इनसे किया जाए, ठीक है? या ये सवाल मैं अपनी अकल से भी इसका और अपने इल्म को जिसको कि मैं हासिल करूं सुन करके और पढ़ करके, उस इल्म की रोशनी में भी मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। और दूसरी बात ये होती है, एक तो ये हो गई ना कि बगैर सोचे समझे बस झट करके मार दिया एक सवाल, और दूसरा ये होता है कि आपने कोई अच्छा सवाल पहले किया था, बेशक अच्छा सवाल किया था और आपको हमने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन वही सवाल दोबारा, वही सवाल दोबारा, वही मशवरा दोबारा, वही मशवरा दोबारा। एक को तो हमने ना मजाक में उनके साथ जरा अच्छा दोस्ती वाला माहौल भी है तो हमने उनको कह दिया कि आपने ये मशवरा जितनी मरतबा साजिश से किया है ना, ठीक है ना, मेरा तो ख्याल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना वो आपका ये मशवरा लिखा जा सकता है कि दुनिया में इतनी दफा किसी एक मामले के ऊपर किसी ने मशवरा नहीं किया हो, किसी एक मामले के ऊपर किसी ने इतनी मरतबा जो है ना वो मशवरा नहीं मांगा होगा जितना आपने मांगा है, तो आपका ये मशवरा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये भी होता है ना, ठीक है ना? मशवरा मांगा, अमल कोई नहीं किया, फिर मशवरा मांगा, फिर अमल कोई नहीं किया, फिर मशवरा मांगा, फिर अमल कोई, और हर मार थोड़े दिन के बाद मशवरा, वही वाला एक मशवरा, इसको कहते हैं सरखाना। अब क्या करें भाई? तो अब कुछ तो आपके ऊपर भी डालना पड़ेगा ना कि भाई शैतान से बचने का अपना इंतजाम करें कुछ, ठीक है ना? पूछें, इल्मी सवाल करें, तमीज से सवाल करें, सोच समझ करके सवाल करें, अपनी खैर के लिए सवाल करें, क्योंकि इधर से अगर आपका रास्ता बंद हो गया ना तो फिर मतलब ये नहीं कि नाउज बिल्ला इस फकीर की क्या हैसियत, कल को दुनिया से चले गए तो फिर अल्लाह ताला अपना निजाम करेगा भाई, हम अल्लाह को हमारी कोई जरूरत की थोड़ी है। ये कहने का मतलब नहीं है कि हमारा रास्ता बंद हो गया तो शैतान का रास्ता खुल जाएगा, हजार रास्ते दुनिया में अल्लाह ताला ने खोले हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला ये रास्ता खोल के देते हैं कि भाई इधर से इल्म सीखो। अब जब हम उसकी नाकदरी करते हैं ना तो फिर ऐसा नहीं है कि दुनिया में हजार दूसरे मशायख पड़े हुए हैं अब हम वहां से सीख लेंगे, नहीं, अल्लाह ताला फिर दूसरा कोई दरवाजा खोलेगा नहीं, अल्लाह ताला फिर दूसरा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, फिर वो एक शैतान का ही दरवाजा खोलेगा। क्योंकि ये नेमत जो है कि भाई कोई सवाल करने वाला जवाब देने के लिए मौजूद था आपके लिए, राइट, और अपना वक्त निकाल करके आपको जवाब दे देता था, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह ने इंतजाम किया है, और अल्लाह ताला जब तक ये निजाम चला रहा है उस वक्त तक ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा ये निजाम। तो अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि अगर किसी ने अल्लाह ताला के बनाए हुए इन वसाइल की कदर नहीं करी तो आइंदा उसके लिए दुनिया में करोड़ों वसाइल मौजूद होने के बावजूद अल्लाह ताला उसके लिए एक रास्ता भी ना खोले फिर उसके बाद, और सिर्फ शयातीन का रास्ता खुल जाए उसके लिए, ठीक है? तो आपका जो सवाल है ना, कैसे मालूम हो कि सही सवाल किया है, तो अब इन चीजों को आप दोबारा सुनिएगा, ठीक है, और फिर सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे मालूम होगा आपको कि कैसे इसमें वो सही सवाल किया जाए, ठीक है? अच्छा, सूरह अनाम की खुलासे तफसीर चल रही थी कि ये काफिर लोग जो होते हैं ना, इनकारी लोग, ये फिर इबादत में दूसरों को अपने रब के बराबर करार दे देते हैं, तो बेनिफिट की वजह से, फायदे की वजह से बंदगी शुरू कर देते हैं। हालांकि क्या है मामला कि वो अल्लाह हुआ अल्लज़ी, वो तो वही है, खलक़कुम मिन तीन, ठीक है, कि वो अल्लाह ऐसा ही है जिसने तुम सबको बवास्ते आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी से बनाया, गारी, गारा जो होता है ना मिट्टी का, कल वाले साहब की जो कब्र बन रही थी लहद, तो उसमें जो स्लैब्स लगाए जाते हैं ना, तो उन स्लैब्स के ऊपर सबसे पहले जो है वो गारे वाली जो मिट्टी होती है ना उसका लेप किया जाता है, उसका लेप किया जाता है ताकि उन स्लैब्स के दरमियान जो जो वो रह जाए, दरारें रह जाएं, गैप्स रह जाएं, वो उस गारे वाली मिट्टी से जो है वो भर जाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या चीज हमें सिखाई, क्या सुन्नत है कि उस गारे वाली मिट्टी के, यानी गारे वाली मिट्टी तो सबसे पहले डाली गई ना, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सूखी मिट्टी, ठीक है, तो वो जो लेप भर भर के हम लगाते हैं, चाहे गारे वाली हो चाहे जो है वो सूखी मिट्टी हो, तो सुन्नत क्या है कि कुरान मजीद की आयत पढ़ना कि एक तुम जो हाथ के अंदर भर करके मिट्टी डाल रहे हो ना उसमें, तो पढ़ो जो अल्लाह ताला फरमाता है, वा मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुमको तख्लीक किया था, तुम्हारा जो पुतला बनाया था ना रूह डालने से पहले जो उसकी हालत थी वो इसी मिट्टी की बनी हुई हालत थी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी के अंदर हम तुम्हें लौटाते हैं, यानी जब तुम मर जाते हो ना तो इसी में, देखिए वो जो गारा और जो मिट्टी जो कब्र में जा रही है तो इसी के अंदर, इसी से बनाया था और इसी के अंदर लौटाया जा रहा है। इसी वजह से कुछ मशायख जो है वो इसको लिटरल मीनिंग में भी लेके जाते हैं, या शायद उसके ऊपर कोई हदीस भी है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन शायद लिटरल मीनिंग में इसको लेके जाते हैं कि जिस मिट्टी से जिस शख्स को बनाया गया था वो उसी मिट्टी में उसकी कब्र बनती है। यानी प्लैनेट अर्थ की ये नहीं कि हर जगह की मिट्टी से जो है वो हर इंसान को बनाया गया, लेकिन जैसे आदम अलैहिस्सलाम को तो है कि जी हर जगह से जो है मिट्टी ली गई और फिर उनसे मिक्स करके जो है ना आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, ठीक है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी तो उसके लिए जो मिट्टी इस्तेमाल की गई वो पूरी प्लैनेट अर्थ की मिट्टी नहीं थी, ठीक है ना, पूरी प्लैनेट अर्थ की मिट्टी का मिक्सचर नहीं था, बल्कि किसी के लिए कराची की मिट्टी ली गई, किसी के लिए लखनऊ की मिट्टी ली गई, किसी के लिए अमेरिका की मिट्टी ली गई, किसी के लिए बर्तानिया की मिट्टी ली गई, किसी के लिए रियाज की मिट्टी ली गई, राइट, और उस मिट्टी से जो है ना इस शख्स का जो है वो बदन बनाया गया। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो जिसके लिए रियाज की मिट्टी लेकर के उसका पुतला बनाया गया था उसने रियाज ही की उसी मिट्टी के अंदर जो है वो दफन होना है। अब हमें इल्म नहीं है कि हमारा पुतला किस वाली मिट्टी से बनाया गया था, इसी वजह से सारी जिंदगी एक जगह पे रहते हैं। हमारे बेटे साहब ने बड़ा अच्छा भी कमेंट दिया था, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि किसी की मिट्टी जो है ना वो होती किसी दूसरे शहर की है, रहता सारे जिंदगी एक शहर में, लेकिन मरने से पहले जो है ना वो सफर करके उस शहर पहुंच जाता है और वहां पे उसका इंतकाल होता है और उसकी कब्र जो है वो वहां बनती है, ठीक है, रिस्क खाया किसी और शहर में लेकिन मिट्टी जो है वो दूसरे शहर की थी, दूसरे इलाके की थी, कब्र वहां पे जाकर के बनेगी, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तीन से बनाया, ठीक है, और उसी तीन के अंदर जो है ना वो हम लौटते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी यही सिखाया कि याद रखो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वाली बात, व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी में से हम तुम्हें खारिज करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एक बार और, वन मोर टाइम, तारतन उखरा, वन मोर टाइम, अनदर टाइम, ठीक है, तो पहले भी तुम्हें इसी मिट्टी से हमने एक्सट्रैक्ट करके बनाया और नेक्स्ट टाइम जब बनाए जाओगे इसी मिट्टी से एक्सट्रैक्ट करके फिर से तुम्हारा बदन बनाया जाएगा। तो अल हुवा अल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन, और दूसरा वक्त मुय्यन यानी दोबारा जिंदा होकर उठने का खास अल्लाह ही के नजदीक मालूम है, वह अजल मुसम्मा इंदहू सुम्मा अंतुम तमतरून, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ही के नजदीक, इंदहू अल्लाह ही के नजदीक, यानी अल्लाह ताला को मालूम है वो वक्त जबकि तुम दोबारा उसके अंदर उठने का वक्त है तुम्हारा, उठाए जाने का, फिर भी तुम में से बाज शक रखते हो, सुम्मा अंतुम तमतरून, तमतरून का बताया था आपको तर्जुमे के दौरान कि शक रखना या डाउट करना, डिस्प्यूट करना, बहस करना इसके ऊपर, ठीक है, क्या कहते हैं ये लोग, यानी सारे ईमान वाले तो नहीं शक रखते ना, ईमान वाले कौन है, नबी अलैहिस्सलाम हर बात पर ईमान लेकर के आते हैं, एतमाद करते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की बातों में से एक बात क्या है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, आखिरत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा वगैरह, ठीक है, तो वो मानने वाले तो शक नहीं रखते, लेकिन बाकी लोग जो है शक रखते हैं, हालांकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई तफरीक नहीं रखी है, इस एक छोटी से जुमले में तुम अंतुम तम तरुण, फिर भी तुम जो है वो शक करते हो, तो तुमसे तो ऐसा लगता है कि सारे इंसान शक करते हैं। ठीक है, वमिनकुम मोमिनुन वमिनकुम काफिरुन, तो यहाँ पे नहीं फरमाया अंतुम, फरमाया तुम सारे के सारे। ठीक है, तो तफसीरन यानी कुरान मजीद के दीगर मुकामात से और हदीस मुबारक से जब इसकी तफसीर की जाती है, पता चलता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला सिर्फ काफिरों को ये फरमा रहे हैं, क्योंकि ईमान वाले शक नहीं करते। तो हजरत ने तफसीरन पे लिखा है कि कयामत को तुम महाल समझते हो, हालांकि जिसने अव्वल हयात बख्शी दोबारा देना उसको क्या मुश्किल काम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दीगर मुकामात फरमाया, पहली दफा जब किया है तो फिर दूसरी दफा में क्या मुश्किल है। शायद शायद सूरह बनी इसराइल के आखिर में ये वाली आयत भी आई थी, मुझे ज्यादा चंद पहले इसके ऊपर बात हुई थी। तो और वही वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और जमीन में भी, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द। ठीक है, तो फिस समावात से भी जाहिरी तौर पर लगता है कि अल्लाह ताला फिजिकली अपने जिस्म के साथ जो है वो आसमानों और जमीन में हर जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद से पता चलता है कि इस्तवा अलल अर्श, ठीक है ना, वो अपने अर्श के ऊपर जो है वो कुर्सी पर है, और ये है सब कुछ है, अल्लाह ताला की कुर्सी भी है, अल्लाह ताला का अर्श भी है। ठीक है, अर्श यानी थ्रोन, और थ्रोन के ऊपर गोया के अब अल्लाह आलम की असल हकीकत क्या है, लेकिन जैसे कि बहुत बड़ा एक थ्रोन होता है तख्त, और उस तख्त के ऊपर एक जो है ना वो कुर्सी होती है जिसके ऊपर जो है वो कोई अब हमें नहीं पता इसके, क्योंकि हमें पता चलता है हदीस मुबारक से ये कुर्सी जो है ना वो बहुत छोटी सी चीज है, और अर्श जो है वो बहुत बड़ी चीज है। कुर्सी अर्श के मुकाबले में बहुत छोटी चीज है, लेकिन आसमानो जमीन के मुकाबले में अल्लाह की कुर्सी जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है ना, अब अल्लाह ताला के नाउ यानी क्या है अल्लाह ताला की हकीकत, हैसियत, बदन, ये सब ये हमें कुछ नहीं पता। हम कुछ नहीं कह सकते कि गोया के कुर्सी छोटी है, नाउज बिल्ला अल्लाह ताला उस कुर्सी के बराबर है तो कुर्सी जो है वो छोटी हुआ करती है, नहीं हमें नहीं पता ये बात। ठीक है, बिल्कुल भी इसके बारे में कलाम करने की हमें इजाज़त नहीं है, और ना हमें हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम ऐसा कोई बात कर सकें। तो फरमाया कि तो यानी फी का मतलब यहाँ पर क्या है कि माबूद बरहक आसमानों में भी और जमीन में भी। ठीक है, अच्छा, यानी और सब माबूद बातिल हैं, एक ही है ये माबूद बरहक। अच्छा, वो तुम्हारे पोशीदा हालात को भी और तुम्हारे जाहिर हालात को भी यकसा जानते हैं। यालमु सर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तकसिबून, और बिलखुसूस तुम जो कुछ जाहिरन या बातिलन अमल करते हो जिस पर जजा और सजा का मदार है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला जो है वो जाहिरी बातों को तो जानते ही हैं, जाहिरी बातों को तो हम भी जो है वो जान लेते हैं, किसी के चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, किसी ने टोपी पहनी हुई है, किसी ने जो है वो चेहरे पे कोई मास्क लगाया हुआ है, किसी ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, तो ये जाहिरी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये जाहिरी बातें तो इंसान भी किसी हद तक जान लेता है, लेकिन बातनी बातें जो हैं वो बस एहतमाली दर्जे में किसी को पता, हाँ ये सोच रहा होगा इस वक्त, है ना, इसके दिल में ये चल रहा है इस वक्त। ठीक है, तो जाहिर और बातिन का जो इल्म होता है हमें भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, जाहिर का ज्यादा बातिन का कम, लेकिन बराबर नहीं होता कभी भी। अल्लाह ताला के लिए जाहिर और बातिन बिल्कुल यकसा है, कितना भी तुम छुपा लो वो उतना ही जाहिर है अल्लाह के लिए जितना कि उन वो बातें जाहिर है जिनको को तुम जाहिर करते हो। ठीक है, और अमल करना ये उसके अलावा है, जैसे टोपी पहनना वो तो टोपी पहनी हुई है, कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक है कि अब आप जो है वो हाथ से कोई काम कर रहे हैं, मूविंग योर हैंड अराउंड, या अपनी आंखों को इस तरफ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये अमल कहलाता है। ठीक है, जुबान से कुछ कह रहे हैं, ये अमल कहलाता है। तो उसके लिए अलग इस लफ्ज इस्तेमाल किया, मा तकसिबू। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर जानता है, और तफसीरन फरमाया कि अमल पर जजा और सजा का मदार है। ठीक है, अमल पर जजा और सजा का मदार है, यहां पर क्या मुराद है कि जहन में तुमने जो बुराई का ख्याल सोचा है ना, ठीक है, अभी उस पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से, शफकत की वजह से अभी तुम्हें गुनाह नहीं देते, अभी तुम्हारे नामे अमाल के अंदर कोई सजा नहीं लिखी जाती जब तक तुम उसके ऊपर अमल ना करो। ठीक है, और जजा का मदार जो है वो हजरत ने यहाँ पर गालबन मुहावरतन लिख दिया है, वरना हजरत को भी हमसे ज्यादा ये बात पता है कि नेकी का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना वो सवाब लिख देते हैं, जब करते हैं तो फिर तो 10 सवाब लिखते हैं, लेकिन इरादा करने के ऊपर एक नेकी लिख देते हैं, तो जजा तो मिल जाती है दिल के इरादे करने की वजह से, अमल ना किए बगैर, अमल किए बगैर ही। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हजरत ने जजा और सजा का मदार अमल के ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि मुहावरतन इसी तरह से बात की जाती है, जजा और सजा का मदार, तो वो उसको जानते हैं। और इस इन कुफार के पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आई, मगर वो इससे एराज ही करते हैं। ठीक है, अवॉइड करना। ठीक है, तो मात आती है मिन आयत मिन आयत रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिज़ीन, एराज करते हैं। ठीक है, तो कुफर की एक जो खासियत है ना, वो सिर्फ, यानी ऐसा नहीं है कि काफिर वही है जो कि मुसलमान से आकर के लड़ाई करना शुरू कर दे, मुसलमान को जो है वो मारना शुरू कर दे, बल्कि काफिरों की जो आदतें होती हैं उनमें से एक आदत जो है ना वो अवॉइड करना भी है, जस्ट जस्ट यानी डोंट इवन लुक दैट वे, डोंट इवन हेयर, तवज्जो ही ना दो इनकी बात की ओर। तो ये जो खासियत है, हम यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये खासियत कुफार की खासियत है, अगर हम भी जो है ना ये अवॉइड करने वाला मामला है ना, कि जैसे कि वो है ना कि हिरन जो है ना वो शेर को देख करके आंखें बंद कर लेता है, ये समझ करके कि अब शेर उसको नहीं खाएगा, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा ना अब शेर, तो अब शेर उसको नहीं खाएगा। तो ये मामला हम भी समझते हैं कि हिदायत की बातें जो है ना, हम अपने अगर कान बंद कर लेंगे ना तो अब जो है वो हमारे ऊपर हुज्जती तमाम नहीं होगी, राइट, अब हमें सजा ही नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने तो कान बंद कर लिए थे, अब कान में आवाज ही नहीं गई तो इस वजह से जो है कोई सजा नहीं मिलेगी हमें, राइट, आंखें बंद कर ली थी, ठीक है, तो चूंकि हमने देखा ही नहीं इस वजह से अब यू नो वी आर सेफ, नहीं यू आर नॉट सेफ, वी आर नॉट सेफ। ठीक है ना, जिस तरह हिरन जो है वो शेर से सेफ नहीं हो जाता, उसी तरीके से जब हिदायत अल्लाह ताला हमारे ऊपर भेज देते हैं ना, अब उसको अवॉइड करने से, आंखें और कान बंद कर लेने से हम बेकसूर नहीं बन जाते। ठीक है ना, ये हिदायत अल्लाह ने भेजी है, मौलवी साहब ने नहीं भेजी है, ये पीर साहब ने नहीं भेजी है, या हमारे किसी तबलीगी भाई ने जो है ना वो मुसीबत बन गया है हमारे ऊपर और हमें जो है ना वो उसने कुरान और सुन्नत की बातें बतानी शुरू कर दी है, क्या मुसीबत है यार, राइट, नहीं वो तो वसीला है। ठीक है ना, अल्लाह ने भेजा है भाई उसको, अल्लाह ने ये पॉसिबल बनाया है कि वो मैसेज आप तक पहुंचा है, अब अगर उससे एराज करेंगे तो अल्लाह के मुजरिम बनेंगे, उन तबलीगी भाई के मुजरिम तो बाद में बनेंगे या थोड़े से बनेंगे, बनेंगे तो मुजरिम अल्लाह के। ठीक है, काफिर यही समझते थे कि हम जो है ना एराज कर लेंगे तो फिर जो है हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर कोई छुट्टी नहीं होती इस तरीके से। अच्छा, तो सो चूंकि ये उनकी आदत बनी हुई है, यानी उन्होंने इसको अपना आदत बना लिया है, उन्होंने इस सच्ची किताब कुरान को भी झूठा बताया। फकत कज़्ज़बू बिल हक लम्मा जाअकुम, जब वो उन तक पहुंच गया, लम्मा जाअकुम, यही बात है ना, जब हम हमारे पास भी हिदायत की बात पहुंच गई, भाई कैसे पहुंचे, अपनी मर्जी से तो नहीं कोई हिदायत की बात जो है वो पहिए लगा करके पहुंच जाए हमारे ऊपर, हमारे पास, राइट, अल्लाह ने पहुंचाई है ना। ठीक है, तो जब वो कुरान के पास पहुंच गया ना, तो उनके पास पहुंची, सो उनकी ये तकजीब खाली ना जाएगी। ठीक है ना, ये जो अवॉइडेंस वाला फिनोमेना या मैकेनिज्म वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना बचने के लिए, नहीं ये खाली नहीं जाएगा, बल्कि जल्द ही उनको खबर मिल जाएगी। ठीक है, फसौफ यातीहिम अंबाउ, खबर उनको जल्द मिल जाएगी उस चीज की जिसके साथ ये लोग इस्तेहजा किया करते थे, कानू भी ही यस्तहजिऊन, ठीक है, इस चीज की जिसके साथ ये लोग इस्तेहजा किया करते थे, मुराद इससे आजाब है कि जिसकी खबर कुरान में सुनकर हंसते थे और उसकी खबर मिलने का मतलब ये है कि जब जब अजाब नाजिल होगा तो इस खबर की तस्दीक आंखों से देख लें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है। ठीक है, हम उससे सिर मुंह जो है ना इख्तलाफ कर सकते हैं कि क्या जरूरत थी। अच्छे, हैप्पी गो लकी किस्म के लोग हैं। क्या हो गया किसी को पिटाई कर दी, क्या हो गया किसी को जो है वो तकलीफ पहुंचा दी, क्या हो गया किसी का पता नहीं किया, तो रहने दें बस। अब छोड़े ना, बस कहते हैं ना हम जाने भी दो। राइट, तो अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला रहीम करीम बेशक है, लेकिन उसके साथ जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक तो तौबा को, क्योंकि मेरी रहमत जो है ना वो तौबा के साथ, ठीक है, और दूसरा ये भी है कि एक इंसान की एक होती है नदामत होती है, उसकी दूसरी अच्छाइयाँ होती हैं, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, तकलीफ भी पहुँच जाती है, वो उसके गुनाहों के अजाले का सबब बन जाती है, और अल्लाह ताला जो है वैसे भी माफ़ फरमा देते हैं बहुत सारे हमारे गुनाहों को। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर तकिया नहीं करके बैठ सकते कि जी बस कुछ नहीं होता और अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, और भाई माफ़ी मांगना भी है वरना फिर अजाब है। ये जो एराज वगैरह करने वाला और ये जो इस्तेहजा करने वाला मामला है ना, ये फिर अल्लाह ताला की माफ़ी से हमें खारिज कर देता है। ठीक है, ये क्यों खारिज कर देता है? आसान अल्फाज में अगर कोई कहे कि भाई जब हम अल्लाह की बातों का और नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन का इस्तेहजा करते हैं ना, इसका मजाक उड़ाते हैं, तो हम ईमान से खारिज हो जाते हैं, यानी फिर अब हमारा मामला ईमान वालों का नहीं। ठीक है, अब हमारा मामला जो है ना वो कुफर में दाखिल हो गया, और अल्लाह ताला ने ये उसूल बनाया हुआ है कि काफिर के लिए कोई माफी नहीं। ठीक है, ईमान वाला गुनाह कर रहा था, इस्तेहजा नहीं कर रहा था लेकिन गुनाह कर रहा था, उसके लिए अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत बहुत माफी का मामला रख लेते हैं, क्योंकि मानने वाला तो है ना, इनकारी तो नहीं है ना। अब देखें, कल ही हम दोस्तों से बात कर रहे थे कि ये जो वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ठीक है, तो अब एक आम से हमारे जैसे इंसान थे, ठीक है, लेकिन ईमान वाले थे, बल्कि अपनी इस तकलीफ के दौर के अंदर भी जो है ना वो अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, ऐसी आवाज उनकी आती थी। पूरा जुमला उनका आखिरी जो मैंने सुना ना, राइट, वो जब उनको अरे बिल्कुल ही बेकस थे और कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्हीं का हमें ही सारा काम करना होता था उनका, तो उसमें उनको थोड़ी तकलीफ भी होती थी, जाहिर है करवट बदलने में अकड़ जाता है ना बदन जो है वो पड़े 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 पड़े, वो तो बेड सोर्स वगैरह हो जाते हैं अगर आप ज्यादा ख्याल ना करें इन चीजों का। ठीक है, तो जब आप पलटेंगे करवट करेंगे तो तकलीफ तो होगी ना, जितना ही आप कोशिश कर लें, हमारे तो बस में भी किसी को राहत पहुंचाना नहीं है, कितनी कोशिश कर लें हम किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते, तो ना उनको तकलीफ होती थी, तो उनके मुंह से जो आखिरी जुमला इस आज से सुना ना वो यही था, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, राइट, दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस। उसके बाद उन्होंने कोई जुमला नहीं कहा, इतने दिनों तक उसके बाद भी दुनिया में रहे, जुमला कोई नहीं सुना उनके मुंह से, उसके बाद आखिरी जुमला मैंने यही सुना है, अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो मैं अपने किसी और कजन से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, उनका उस अजीम परवरदिगार से ये वईद है कि अपने किसी बेकस और लाचार बंदे के मुंह से ये अल्फाज सुने कि अल्लाह माफ कर, और अल्लाह उसको माफ ना दे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये कब होता है? जब हमारा ईमान सलामत होता है, ठीक है ना, और आखिरी अल्फाज पर क्या, तो उसके बाद कोई जुमला तो नहीं सुना, लेकिन आखिरी अल्फाज सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब कोई तकलीफ पहुंची अल्लाह अल्लाह, पूरा जुमला नहीं बोलते थे उसके बाद, तो ये क्या है? ये ईमान की सलामती है। ठीक है, तो देखिए ईमान वाला जब इस दुनिया से जाता है ना, अब आप हदीसें उठा करके देखें, ठीक है, अल्लाह ताला हदीसों में नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि उसके जो है ना वो तुम गुस्ल में शामिल हो गए, अल्लाह ताला तुम्हें इतना सवाब देंगे, तुम उसके लिए जो है ना वो जनाजे की नमाज में शामिल हो गए तो इतने किरात जो है वो, एक किरात जो है वो तुम्हें सवाब मिलेगा, फिर तुम उस जनाजे के साथ चल करके जाओगे तो इतने किरात, राइट, और वो किरात जो है वो जन्नत के किरात है, पता नहीं कितने है, हमारे वाले कैरेट को थोड़ी, राइट, इतने किरात जो है वो तुम्हें सवाब मिलेगा, और तुम उसके कब्र में उतारने, यानी ये क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला जो है वो अपने किसी, जैसे कि हम किसी रिश्तेदार जो कि खुद बेचारा लाचार है ना, उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो है हमारा रिश्तेदार, ठीक है, तो अब हम ना उसके काम करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे बंदे से कहते हैं कि यार इसका काम कर दो, इसके पास तो कोई पैसे नहीं है, ये तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास हैं पैसे, मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसका ये काम कर दो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसका वो वाला काम कर दो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसका ये वाला काम कर दो, ठीक है। तो देखिए ईमान वाले के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या मामला करते हैं कि तुम मेरे इस लाचार और बेबस, ये दुनिया से जा चुका है, इसके अंदर अब रूह खत्म हो चुकी है, ये पहले भी इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, ये कुछ नहीं कर सकता, तुम इसकी खिदमत करोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसके जनाजे में जाओगे मैं तुम्हें दूंगा, राइट। कदरदानी देखें आप, ईमान वालों की कदरदानी देखें आप, अल्लाह ताला कैसे कदरदानी करते, ठीक है। लेकिन दूसरे भी बंदे हैं जो कि इनकार कर देते हैं, वो कुफर करने वाले बंदे हैं, इस्तेहजा करने वाले अल्लाह के दीन के साथ, उनका क्या मामला है, उनकी नमाज जनाजा ही नहीं होती, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, उनकी कब्र के अंदर तदफीन का एहतमाम करने की इजाजत ही नहीं है, उनको उनकी लाश काफरों के हवाले कर दो, उन्हीं के जैसे लोगों के हवाले कर दो, ये नहीं मानते थे मेरे नबी को, ये मेरी आखरत को नहीं मानते थे, ये मेरे दीन की खबरों का मजाक उड़ाया करते थे, उनको समझते थे कि ये तो ऐसी जो है ना वो किस्से कहानी है, वो भी तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, वो भी तो तीन से पैदा किए गए ना, उनको भी तो अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी रिस्क दिया, अल्लाह के दिए रिस्क के बगैर कहीं और से रिस्क लेकर खाते थे ये काफिर लोग, राइट। लेकिन मरने के बाद गड़े में, अगर काफिर उनको दफनाने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तुम उनको गड़े में फेंक करके आ जाओ, गड़े में फेंक करके आ जाओ, कोई जो है ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा उसके ऊपर, जबकि एक ईमान वाले बंदे के लिए कितना एहतमाम, कितनी ताकीदें, कितने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है ईमान, ये वो ईमान है, ठीक है, कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का दारोमदार है। तो इस ईमान के बारे में हमें कितना ज्यादा फिक्रमंद रहना चाहिए, कितना परेशान रहना चाहिए, कहीं ये ईमान हमसे या हमारी औलादों से रुखसत ना हो जाए, छीन के ला ले जाए कोई इस ईमान को, राइट। कितना केयरफुल होने की जरूरत है हमें इस ईमान के बारे में, ठीक है ना, कितना केयरफुल होने की, और हम उतने ही ज्यादा, अल्लाह हमें माफ कर दे, हम उतने ही ज्यादा अनकेयरफुल हैं इस ईमान के बारे में, और एज्यूम करके बैठे हुए कि कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता ईमान हमारे पास से, ना मेरे बच्चे का कोई ईमान ले सकता है, ना मेरा कोई ईमान ले सकता है, इतना ज्यादा केयरलेस, इतना ज्यादा केयरलेस ईमान के बारे में, हमें इदराक नहीं है, हमें एहसास नहीं है कि इस ईमान के ऊपर क्या चीज डिपेंड करती है, ठीक है। आलम बरजख और आलम जो आखरत है उसके मामलात तो बाद में आएंगे, इवन इस दुनिया के अंदर जो है ना, ये जो सारा का सारा खिदमत का सवाब भी और जनाजे का सवाब भी और कब्र का सवाब, तदफीन का सवाब भी और ये सारा सवाब भी, ये सिर्फ ईमान के साथ है, ये मशरूफ, ठीक है। तो ये है हकीकत, और यही हमारा कुरान, यही जो है ना हमारे नबी अलैहिस्सलाम हमें बताते हैं, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।